रेहान और रश्मि दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी। कुछ देर तक वो यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाए उन्हें महसूस करते रहे। फिर रश्मि ने उसके सीने से अपना सर निकालकर उसको देखते हुए कहा, रेहान अब भी आंखें बंद किए अपने प्यार को अपनी बाहों में थामे इस खास पल को महसूस कर रहा था। उसने आंख बंद किए हुए ही कहा, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना। रश्मि की उदासी भरी आवाज रेहान के कानों में पड़ी तो उसने सर झुकाकर रश्मि को देखा, जो मायूस निगाहों से उसे ही देख रही थी। रश्मि ने अब आगे कहना शुरू किया, तुम्हें नहीं पता कल शाम को जब से पापा ने मुझे रिश्ते वाली बात बताई है कितना परेशान हूं मैं। जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है मुझे अपने लिए। पापा ने कहा तो है कि बस लड़के से मिलना है, अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो कोई मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डालेगा, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं लड़के से मिलना भी नहीं चाहती थी पर पापा के लिए हाँ कहना पड़ा। अगर पापा को लड़का पसंद आ गया और उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ कह दिया तो मैं उनका दिल नहीं दुखा पाऊंगी, उन्हें नहीं बता पाऊंगी कि मुझे किसी और से प्यार है और मैं उनकी पसंद से शादी नहीं कर सकती। मेरे पापा कहते हैं कि मैं उनका गुरूर हूँ और अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी के सामने उनके गुरूर को टूट कर बिखरते नहीं देख सकती, उनके सर को किसी के सामने झुकने नहीं दे सकती मैं। मुझे डर है कि अगर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया तो मैं चाहकर भी रिश्ते से इनकार नहीं कर सकूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से, उनका दिल दुखाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं बनने दे सकती। अगर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जान नहीं दूंगी अपनी, क्योंकि इस पर मेरा नहीं मेरे मम्मी पापा का हक है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिसकी वजह से उनकी परवरिश पर कोई उंगली उठाए या उनका सर किसी के आगे झुके, पर मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम बसे हो। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को खुद पर कोई हक नहीं दे सकती। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरी सांसें भले ही चल रही होंगी, सबको मैं दिखूंगी, पर तब सिर्फ वो शरीर ही जिंदा होगा, आत्मा मर चुकी होगी, जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं। रश्मि अब परेशान और उदास हो गई थी, आंखों में रेहान से दूर जाने का दर्द आंसू बनकर उतर आया था। रेहान की मुस्कान भी उसकी गंभीर बातें सुनकर गायब हो चुकी थी और वो पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख रहा था। रेहान रश्मि के आंसुओं को साफ करते हुए बड़े प्यार से बोला, पागल लड़की, कुछ भी सोचती हो और कुछ भी कहती हो, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा। मॉम डैड तो कल ही आ पाएंगे क्योंकि बैंगलोर से इतनी जल्दी यहाँ आना मुमकिन नहीं है और शादी की बात भी वही करेंगे, पर मैं आज तुम्हारे पापा को इस बात के लिए कन्विंस कर लूंगा कि वो पहले मेरे पेरेंट्स से मिल लें, उसके बाद कोई भी फैसला लें, उससे पहले तुम्हारे लिए कोई लड़का ना देखे। अब खुश? रश्मि ने सर हिला दिया। अब रेहान ने गंभीरता से कहा, वैसे रश्मि तुम क्या अपने पापा पर गई हो? थोड़ा थोड़ा क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रश्मि ने तुरंत ही उल्टा उसी से सवाल कर लिया। रेहान कुछ पल खामोशी से सोचता रहा, फिर उसने बेबस चेहरा बनाकर कहा, मैं सोच रहा था जब बेटी इतनी सख्त है तो उसके बाप तो बिल्कुल गब्बर सिंह होंगे, तुम्हें राजी करने में मेरी जान निकल गई, अब तुम्हारे पापा को मनाते मनाते तो लगता है कि मेरा स्वर्गवास ही हो जाएगा, फिर तुमसे शादी करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। रश्मि कुछ पल आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसको देखती रही, फिर जैसे ही उसको उसकी बात समझ आई उसकी आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। उसने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुमने मेरे पापा को गब्बर कहा? नहीं, मैंने तो तुम्हें लेडी गब्बर कहा, रेहान ने उसको चिढ़ाया। रश्मि ने घूर कर उसको देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मैं गब्बर हूँ तो जाओ कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो, एकदम छुई मुई सी। रश्मि ने नाराजगी से मुंह फुलाया और उससे दूर होने लगी। रेहान उसको तंग कर रहा था जिसमें उसको खूब मजा आ रहा था। उसने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं मुझे तो ये क्यूट लेडी गब्बर ही पसंद है, इसे ही अपनी जिंदगी में शामिल करना है मुझे, वो छुई मुई टाइप की लड़कियां कुछ जचती नहीं है मुझे, मेरे लिए तो मेरी लड़ाका ही ठीक है। वैसे मैं सीरियसली पूछ रहा था, तुम्हारे डैड भी तुम्हारी तरह सख्त हैं क्या? रेहान आखिरी की बात कहते हुए वो एकदम गंभीर हो गया। अब रश्मि भी गंभीरता से बोली, मेरे साथ तो वो फ्रेंडली हैं, उनकी इकलौती औलाद हूँ तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, माँ कहती है कि मुझे उन्होंने ही बिगाड़ा है, मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ इसलिए उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, कभी माँ अगर मुझे डांटने लगे तो उनसे भी बचा लेते हैं, मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आने देते वो, इतना प्यार है उन्हें मुझसे, तो मैंने कभी उनका गुस्सा देखा ही नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर जितना मैं अपने पापा को जानती हूँ वो बहुत स्वीट एंड केयरिंग है, मेरे प्रिंस चार्मिंग है वो, अब तुम उनकी लाडली बेटी का हाथ मांगने उनके पास जाओगे तो वो यूं ही बिना कुछ देखे तो तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ नहीं देंगे। ये तो जरूर देखेंगे कि उन तुम दिल के टुकड़े को संभालने लायक हो भी या नहीं। इसलिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होंगे, क्योंकि बात मेरी जिंदगी की होगी जिसके साथ वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी खुशी तुम्हारे साथ है और वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाहते हैं। इसलिए शुरू में थोड़ा सख्त बनेंगे, शायद तुम्हें डराएं भी, ये देखने के लिए कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभा पाओगे या नहीं। कहीं मुश्किल आने पर बीच सफर साथ तो नहीं छोड़ जाओगे। लेकिन जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे लिए एकदम सही चॉइस हो तो वो रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। बेचारा रेहान उसकी बातें सुनकर डर गया। जाहिर सी बात थी, किसी बाप से उनकी इकलौती बेटी का हाथ मांगने जाएगा तो वो फूलों से उसका स्वागत तो नहीं करेंगे, इसलिए उसको नर्वसनेस हो रही थी। रश्मि ने उसका परेशान चेहरा देखा तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने चहकते हुए कहा, यस, ये बेस्ट रहेगा। रेहान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रश्मि ने उसके कन्फ्यूज्ड भाव देखे तो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पापा से हमारी बात करने में डर लग रहा है ना, तो मैंने इसके लिए एकदम ढांसू आइडिया सोच लिया है। और तुम्हारा ढांसू आइडिया है क्या? रेहान ने भौं हुचकाकर उसको देखा। रश्मि ने बड़ी ही अदा से जवाब दिया, आरू पर माँ पापा को बहुत विश्वास है और आरू तुम्हें जानती है, तो अगर हम मम्मी पापा से कुछ भी बात करने से पहले आरू को अपनी तरफ कर ले तो तुम उसके साथ घर आना। जब वो हमारे बारे में बात करेगी तो मम्मी पापा को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट चॉइस हो और हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे भी आरू बहुत आसानी से उन्हें कन्विंस कर लेगी, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया, है ना बिल्कुल मेरे तरह जबरदस्त? रश्मि ने खुद पर ही इतराते हुए उससे सवाल किया। रेहान कुछ पल उसके आइडिया के बारे में सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, दिमाग तो है तुम्हारे पास, नॉट बैड। उसकी बात सुनकर रश्मि ने घूर कर उसको देखा तो रेहान मुस्कुरा दिया। रश्मि कुछ पल उसको खा जाने वाली निगाहों से घूरती रही, फिर उसकी बांह अपनी कमर पर से हटाकर उसको थामते हुए बोली, चलो अभी चलकर आरू से बात कर लेते हैं। उसने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया पर रेहान अपनी जगह से हिला ही नहीं। रश्मि ने पलट कर उसको देखा तो रेहान ने तीखी निगाहों से उसको घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें? इतना उतावलापन भी ठीक नहीं।
हाँ है जल्दी मुझे, क्योंकि शादी की तलवार तुम्हारे नहीं मेरे सर पर लटक रही है। लड़के वाले तुम्हें नहीं मुझे देखने आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे सब सेटल करना है, समझे? इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं आज वाले लड़के से ही शादी कर लूंगी और तुम मेरी संगीत में चन्ना मेरिया गाते रह जाओगे। रश्मि ने उसको घूरते हुए धमकी दे डाली, फिर उसकी बाँह पकड़े हुए ही पलट कर आगे बढ़ गई। रेहान ने अपने होठों को गोल करते हुए ठंडी आह भरी और मन ही मन बोला, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, सारी जिंदगी अब ये दादागिरी झेलनी पड़ेगी तुझे। वो भी उसके साथ चल दिया। डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है तो शूट पर कल आएगा, आज वो संभाल ले। फिर दोनों वहां से निकल गए। रश्मि अपनी स्कूटी पर थी और रेहान अपनी गाड़ी में। रेहान ने तो उसे साथ चलने को कहा था पर रश्मि ने ही इनकार कर दिया, तो बेचारा उतरा हुआ मुंह लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया।